अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है नॉवेल बेबाकों की तलाश। ये नॉवेल नाबीना ख्वातीनों हजरात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। पेशकश करतबा ऑडियो लाइब्रेरी, मुसन्निफ इब्ने सफी, आवाज हुमा निहाल। मजीद कुतुब के लिए 0300-291-9600 और 0321-213-8225 पे रब्ता कीजिए। तो आइए सुनते हैं पार्ट 3। आखिर उसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि तुम इतने अखराजात बर्दाश्त करते हो? बड़े काम का आदमी है, सफदर बोला। हंसने के मकाम पर रोता है और रोने के मकाम पर कैसे लगाता है। क्या तुम किसी देसी रियासत से ताल्लुक रखते हो? हाँ, मैं राणा तहूर अली संदूकी का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। ये राणा तहूर अली कौन है? बहुत बड़ा आदमी है। ये जानवर जिसे अभी तुम धाड़े मारते देख चुकी हो, उसी ने पाल रखा है। राणा तहूर अली कहाँ है? पता नहीं, सैलानी आदमी है, कहीं ना कहीं जरूर होंगे। मुझे बेहद शौक है कि किसी देसी रियासत के शहजादे की सेक्रेटरी बनूं। सफदर ने चलते चलते रुक कर उसे गौर से देखा। वो भी रुक गई थी। इस तरह क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि कहीं तुम पहले ही से तो इस मौके की ताक में नहीं थी। क्या मतलब? तुम ख्वामखा मुझसे गुफ्तगू के मौके तलाश करती हो, सफदर ने सख्त लहजे में कहा। चलो यही सही, वो बड़े दिल आवेज अंदाज में मुस्कुराई। लेकिन इसमें खफा होने की क्या बात है? तो तुम हमारे स्टेट की मुलाजिमत चाहती हो, सफदर ने पुरतफक्कुर लहजे में कहा, लेकिन आवाज में सख्ती अभी तक बरकरार थी। यकीनन चाहती हूँ। फिलहाल क्या कर रही हो? मैं यहाँ इस होटल के टेलीफोन एक्सचेंज पर बैठती हूँ। क्या ये मुलाजमत पसंद नहीं? अगर आजाद रवि पर उतर आऊँ तो इससे ज्यादा मनफ़ात बख्श और कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। अच्छी बात है, मैं गौर करूँगा। तो फिर मैं सुबह को मिलूं? यूरेशियन लड़की ने पूछा। मैं खुद मिल लूंगा। सफदर भी किसी कदर लगावट से मुस्कुराया। तुम्हारे ड्यूटी के औकात क्या हैं? क्या नाम है? रीटा, रीटा जिब्राइल। मैं यहीं रहती हूँ, कमरा नंबर 27। ठीक है, मैं सोचूंगा कि तुम्हारे लिए कहाँ जगह निकाली जाए। सिर्फ सेक्रेटरीशिप चाहती हूँ, वो उंगली उठाकर बोली। ओहो, तो तुम मेरी जगह लेना चाहती हो? तुम्हें वो कोई दूसरी जगह दे देगा? मर्दों के मर्द सेक्रेटरी अच्छे नहीं लगते। खैर खैर, देखा जाएगा, सफदर जमाही लेकर बोला। अब मुझे नींद आ रही है, शब बखैर। वो दूसरी तरफ मुड़ती हुई बोली, ख्याल रखना। सफदर अपने कमरे में जाने से पहले जोसेफ की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो दरवाजे से 3 या 4 फुट के फासले पर पत्थर के किसी बुत की तरह बेहिशो हरकत खड़ा था। क्या हो गया था तुम्हें? सफदर ने पूछा। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ मिस्टर, सिर्फ उसके होठों ने जंबिश की। क्या मतलब? जो कुछ मैं कर रहा हूँ बॉस के हुक्म से कर रहा हूँ, लेकिन तुमने इस वक्त उस मनहूस बदरू का नाम लेकर मेरा नशा उखाड़ दिया है। छठी बोतल में सिर्फ चौथाई रह गई है। सोचता हूँ सुबह तक क्या होगा। इमरान साहब ने, खामोश रहो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। अभी वो सफेद चुड़ैल तुमसे क्या बातें कर रही थी? ओहो, तो क्या मैं तुम्हें जवाब दे हूँ? नहीं, लेकिन होशियार रहना। सफेद नस्ल का खून जिसमें भी हो, उससे होशियार रहो, ख्वामखा अपना वक्त जाया नहीं करते। मशवरे का शुक्रिया, सफदर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और कमरे से चला गया। सुबह होते ही सबीहा पाएं बाग में निकल आई। अभी सिर्फ वही मुलाजिम बेदार हुआ था जिसके जिम्मे बावर्ची खाने के इंतजामात थे, लिहाजा वो बावर्ची खाने में मशगूल था। वो माली की कोठरी की तरफ बढ़ी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उसने झांक कर देखा, चारपाई खाली नजर आई और उसने इत्मीनान का सांस लिया। रात ही निकल भागा होगा, उसने सोचा। अंदर मलगिज्जा सा अंधेरा था। उसने दरवाजा कुछ और खोलकर चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर जी धक से रह गया। वो चारपाई के नीचे कौन पड़ा था जिसकी टांगे दूसरी तरफ निकली हुई थी। दिल शिद्दत से धड़कने लगा। कुछ समझ ही में ना आया कि क्या मामला है। वो दरवाजा छोड़कर पीछे हट आई। अभी पिछले ही दिनों उसने एक जासूसी नॉवेल पढ़ा था जिसमें एक ऐसे ही अजनबी की कहानी थी। अजनबी ने किसी मकान में रात बसर करने की इजाजत चाही थी। वो सोया भी था और जब दूसरी सुबह साहब खाना उसके कमरे में गया तो उसकी गर्दन धड़ से अलग पाई थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अगर किसी ने कत्ल कर दिया है तो अब क्या होगा। मुलाजमीन शहादत देंगे कि उसकी माँ और नानी ने उसे पकड़वा कर बंद करा दिया था। उन्हें इसका तो इल्म ही नहीं था। इसने रात ही उसे स्टोर से बाहर निकालकर माली की कोठरी में पहुंचा दिया था। वो दिल ही दिल में खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाने लगी। सोच रही थी कि बुजुर्गों को परेशान करने की सजा मिली है उसे। फिर वो उछल पड़ी क्योंकि माली की कोठरी का दरवाजा आवाज के साथ खुला था। गुड मॉर्निंग, अजनबी की भर्राई हुई आवाज आई। तुम जिंदा हो? सबीहा उसकी तरफ झपटी। अभी तक तो जिंदा हूं, लेकिन अगर 10 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता ना मिला तो यही ढेर हो जाऊंगा। तो तुम ही चारपाई के नीचे पड़े थे? जी हाँ बिल्कुल। क्या करता? मैंने सोचा जिसकी चारपाई है अगर उसने आकर सोते से उठा दिया तो खामखा की बोरियत होगी, लिहाजा क्यों ना मैं चारपाई के नीचे ही सो रहूं। अच्छा अब चलते फिरते नजर आओ, वो अपना ऊपरी होंठ भींचकर बोली। नाश्ते के बगैर ही? नहीं, ऐसा जुल्म ना कीजिए। मेरी जेब ना कट गई होती तो कभी ना कहता। मुझे खुद ही भीख मांगते हुए शर्म आती है। तुम यकीनन कोई भिखारी ही हो, सबीहा दांत पीस कर बोली। मुझे अब तुमसे जर्रा बराबर भी हमदर्दी नहीं रह गई। तुमने अभी मुझे डरा दिया था। मैंने? अजनबी ने हैरत से कहा। कब? जब तुम चारपाई के नीचे औंधे पड़े हुए थे। मैं समझी शायद किसी ने तुम्हें कत्ल कर दिया है। नौजवान बौखला कर अपनी गर्दन टटोलने लगा, फिर फंसी फंसी सी आवाज में बोला, क्यों डरा रही हैं मुझे? बस चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? उसने बेबसी से कहा। सामान अगर मिल भी गया तो वापसी का किराया नहीं है। अब एक पाई भी न दूंगी, समझे? जी समझ गया। तो फिर जाओ। या अल्लाह मैं कहाँ जाऊं? वो अपनी परेशानी पर दो हत्तर मारकर बिलबिलाया। अरे मैं मोटर ड्राइवर ही भी कर सकता हूँ, सिर्फ DSC ऑक्सिन ही नहीं हूँ। क्या क्या DSC ऑक्सिन? तुम? हाँ मैंने फिजिक्स में रिसर्च की थी। जनाब ने? वो उसके चेहरे के करीब हाथ ले जाकर बोली, बिल्कुल बिल्कुल, मैट्रिक तक फिजिक्स पढ़ ली होगी। खुदा गारत करे मुझे, वो गुस्से से अपना सर पीट कर बोला, कैसे लोगों में आ फंसा हूँ। तुम कोई बहुत बड़े फ्रॉड हो, मुझे कम इनकार है इससे, लेकिन मैट्रिक वैट्रिक की बात तो ना करो। तुम्हें एतराफ है कि तुम फ्रॉड हो? बिल्कुल है। भूख लगी हो तो सब कुछ बताना पड़ता है। मेरी बात सुनो, मैं दुनिया में सिर्फ तीन काम कर सकता हूँ, साइंस की प्रोफेसरी या मोटर ड्राइवरी, या फिर भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूँ। तो यहाँ तुम प्रोफेसर की तलाश में आए थे या मोटर ड्राइवरी की? किसी के लिए भी आया हूँ, लेकिन अब तो भीख मांगता फिर रहा हूँ, वो भी नहीं मिलेगी। अब चले ही जाओ, वरना नौकरों को बुलाती हूँ। चला जाऊंगा, लेकिन जाऊं कहाँ? तलाश करो जाकर अपने चौधरे अब्दुल लतीफ को। कोई तदबीर बताइए ऐसी कि उस तक पहुंच सकूं। सर के बल खड़े होकर सोचो, शायद याद आ जाए। जी बहुत अच्छा, बड़ी सादगी से कहा गया। और फिर सबीहा ने देखा, वो फुर्ती से सर के बल खड़ा हो गया। अरे अरे, ये क्या हरकत? सबीहा बौखलाकर चारों तरफ देखती हुई बोली, इतना उजाला तो फैल ही चुका था कि उसकी ये हरकत दूर से भी देखी जा सकती। आप ही ने तो कहा था, अजनबी ने उसी तरह सर के बल खड़े हुए कहा, तुम भिखारी ही नहीं, मदारी भी हो। सबीहा दांत पीस कर बोली, सीधे हो जाओ, वरना अब मैं ही तुम पर पथराव शुरू कर दूंगी। अरे बाप रे, वो सीधा होता हुआ बोला, चंद लम्हे सबीहा को घूरता रहा, फिर बोला, अब मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। तो क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? चीखता फिरूंगा सारे शहर में कि मैं अफसर हूँ। डिप्टी साहब की कुरतुल ऐन सबीहा ने खत लिखकर मुझे बुलवाया था, रात भर स्टोर में बंद रखा और अब ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है, दो अल्लाह के नाम पर। अगर तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो जहन्नम में पहुंचा दिए जाओगे। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ नाश्ता कराओ, नहीं तो यहीं खड़े होकर चीखना शुरू कर दूंगा कि स्टोर रूम से निकाल कर इस कोठरी में बंद रखा था। तुम अजीब आदमी हो, अजीब तरीन कहो, मोटर ड्राइवरी ही दिलवा दो कहीं। ऐसे ऐसे करतब दिखाऊंगा कि जी खुश हो जाएगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? फिलहाल नाश्ता और उसके बाद नौकरी, लेकिन नौकरी बगैर इंटरव्यू, वरना हरगिज ना मिलेगी। पिछले महीने एक जगह इंटरव्यू में गया, वहाँ एक काठ का घोड़ा रखा हुआ था जिस पर बैठकर बच्चे झूलते हैं। एक साहब ने मुझसे पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, काठ का घोड़ा। उन्होंने फिर पूछा, अगर इस पर कोई मोअम्मर आदमी बैठा हुआ नजर आए तो तुम पर उसका क्या रद्दे अमल होगा? मैंने कहा, पहले ये बताइए रद्दे अमल किसे कहते हैं? बोले, रिएक्शन को। मैंने कहा, मैं उन्हें इस हाल में देखकर काठ का उल्लू कह बैठूंगा। चलो, इंटरव्यू तो वहीं का वहीं खत्म हो गया और मैं पिछली रात तक परवाना तकर्रुर का इंतजार करता रहा हूँ। कयामत तक करते रहोगे? तुम खुद ही कोई जेब कतरे मालूम होते हो, ख्वा मखा जेब कट जाने की कहानी ले बैठे। उजाला फैल गया है, अजनबी ने चारों तरफ देखते हुए जल्दी से कहा, अगर किसी ने मुझे स्टोर रूम की बजाय यहाँ देख लिया तो तुम्हारी क्या पोजीशन होगी? अच्छा, टाटा। उसने फुर्ती से कोठरी में घुसकर अंदर से कुंडी चढ़ा दी। सबीहा दांत पीसती रह गई। शिद्दत से गुस्सा आ रहा था इस चिकने घड़े पर। कोई हयादार आदमी होता तो ऐसी बातें उसे लड़ मरने पर उकसाती, लेकिन यहाँ तो इस तरह इनकी पजीराई हुई थी जैसे कान पर चलने वाली चींटी झाड़ दी गई हो। फिर अब वो क्या करे, किस तरह इस बला से पीछा छुड़ाए। उसने भी ये बात बड़े पते की कही थी कि अगर वो स्टोर रूम की बजाय वहां पाया गया तो खुद सबीहा का क्या हशर होगा। वो झल्ला कर दरवाजा पीटने लगी और वो अंदर से बोला, मैं तुम्हारे पापा के आने तक यहीं बंद रहूंगा। ए मोदी खबीस, निकलो बाहर, वरना। वो दांत पीस कर बोली। शाय लाओ, अंदर से आवाज आई, खुदा गारत करे तुम्हें कमीने। चलो यही दुआ मांगो, मैं भी इस दुख भरी जिंदगी से निजात का ख्वाहा हूँ। मरोगे, अल्लाह ने चाहा तो एड़ियां रगड़ कर मरोगे। थोड़ी देर और नाश्ता ना मिला तो तुम्हारी बददुआओं के बगैर ही ये सब कुछ हो जाएगा। सबीहा ने सोचा, इस मोदी को अब मजा ही चखाना चाहिए। तनतनाती हुई सीधी बावर्ची खाने की तरफ आई। यहाँ मुलाजिम चाय तैयार कर चुका था, कुछ सैंडविच भी बना लिए थे, साथ ही बड़ी बी के लिए दलिया भी तैयार कर रखा था। उसने उससे कहा कि थर्मोस में चाय भर दे और कुछ सैंडविच भी पैक कर दे, वो बाहर जाएगी। फिर उसने गैराज से गाड़ी निकाली और नाश्ते का सामान लेने फिर बावर्ची खाने में आई। बावर्ची ने नाश्ते की झाबी तैयार कर दी थी। सबीहा सोच रही थी कि आज इस कमबख्त को सारा दिन भूखा मारा जाए, क्यों ना वो माली की कोठरी को बाहर से मुकफ्फल कर दे, शायद ही कोई उधर ध्यान देता हो। दरवाजे में कुफल देखकर किसी को भी इस नई तब्दीली का एहसास ना होगा। वो शोर तो मचाने से रहा, चूं भी की तो हजामत बन जाएगी। इतना भी अहमक ना होगा कि इतनी मोटी सी बात समझ में ना आ सके। बहरहाल उसने माली की कोठरी मुकफ्फल कर दी। जल्दी में थी, अक्सर सुबह का नाश्ता शहर से बाहर किसी वीराने में करती थी। ऐसे मौके पर कार खुद ही ड्राइव करती थी। वैसे भी आजकल कोई ड्राइवर नहीं था, डिप्टी साहब को ड्राइवर की तलाश थी, लेकिन अभी तक कोई माकूल आदमी नहीं मिला था। बहुत आजाद ख्याल थे, लेकिन ना जाने क्यों ड्राइवर के लिए बूढ़े आदमी की तलाश थी। सबीहा ने कई बार इस मसले पर उनसे बहस भी करनी चाही थी, लेकिन वो इधर उधर की बातों में उड़ा जाते। उफक की गहरी सुर्खी में चमकीलापन आ चुका था और सबीहा की कार वीरानों की तरफ उड़ी जा रही थी। आदिलाबाद में बहुत बड़ा शहर नहीं था, मील 1.5 मील के बाद ही हरे भरे खेतों के सिलसिले शुरू हो गए थे। दफातन अकब नुमा आईने में सुर्ख रंग की स्पोर्ट कार नजर आई। उसे यह खलस गुस्सा आ गया। बदतमीज, वो होंठों ही होंठों में बड़बड़ाई। वो जब भी इस तरह तन्हा गाड़ी से लेकर बाहर निकलती वो मर्दूद ताकुब शुरू कर देता था, लेकिन आज तक छेड़छाड़ नहीं की थी। जहां वो ठहर कर नाश्ता करती उससे थोड़े ही फासले पर वो भी अपनी कार रोक देता, या तो खुद भी नाश्ता करता या सिगार सुलगा कर बैठा रहता। उससे डिप्टी साहब भी खाइफ रहते थे, लिहाजा वो उन्हीं से शिकायत करके उसका क्या बिगाड़ लेती। डिप्टी साहब भी उससे इसलिए डरते थे कि वो डिवीजन के कमिश्नर का साला था, एन उनके बंगले के सामने वाली कोठी में रहता था, वहां औरतें नहीं थी। लेकिन कभी कभी नजर जरूर आती थी। हर बार नई नई शक्लें, भद्दा सा आदमी था, अलबत्ता आजा मजबूत थे। बस ऐसा लगता था जैसे किसी ने बनने को पहलवानी का शौक चढ़ाया हो। आज भी उसने कुछ आगे बढ़कर अपनी स्पोर्ट कार रोकी थी, तभी यहाँ गाड़ी से बाहर ना निकली। वो उससे खाइफ नहीं थी। उसकी बजाय कोई और लड़की होती तो एक आध बार के ताकुब के बाद ही से उधर आना छोड़ देती। लेकिन सबीहा ने अपनी रविश नहीं बदली थी। अब तो उसे जिद हो गई थी। चाहती थी कि कभी वो कुछ बोले और वो उसकी गर्दन दबोच बैठे। उसने सोचा, आज गाड़ी से बाहर ना निकलेगी, शायद इसी पर वो कुछ कहे। सबीहा को इसकी परवाह नहीं थी कि यहाँ इस वीराने में उन दोनों के अलावा दूर दूर तक किसी तीसरे वजूद का पता नहीं। अगर उसने कुछ शुरू ही कर दिया तो क्या होगा। दफ़तन उसने देखा कि वो अपनी गाड़ी बैक करके उसी तरफ ला रहा था। निचला होंठ दांतों में दबाए हुए वो उसकी स्पोर्ट कार को घूरती रही। फिर उसकी गाड़ी उसके बराबर ही आ लगी और सबीहा का जी धक से हो गया। एक बहुत बड़ा चाकू उसकी गोद में खुला पड़ा था। अब उसे एहसास हुआ कि वो जबरदस्त गलती करती रही है। अब अगर इस वीराने में वो कुछ शुरू कर दे तो उसका क्या बिगाड़ सकेगी। उसने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। आखिर उसने इस जिदबंदी के सिलसिले में इस पहलू पर गौर क्यों नहीं किया था। वो क्या बिगाड़ सकेगी उसका। जिस्मानी कुव्वत उससे ज्यादा तो नहीं रखती। शायद इन दिनों सितारे ही गर्दिश में थे। हर मामले में मुंह की खानी पड़ रही थी। उसने गाड़ी उसकी गाड़ी के बराबर रोक कर इंजन बंद कर दिया। उसकी तरफ मुड़ा और सबीहा ने उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट देखी। अध खुली आंखों के साए में वो मुस्कुराहट कितनी खौफनाक थी। लेकिन सबीहा भी जी कड़ा करके उसकी तरफ देखी ही जा रही थी। कभी कभी उस चाकू की तरफ भी देखती जो उसकी गोद में पड़ा चमक रहा था। दफातन उसने सबीहा के चेहरे से नजर हटाई और अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रखी हुई झाबी से एक सैंडविच निकाला और खामोशी से खाने लगा। सबीहा भी चौंकी। जिंदगी में शायद पहली बार वो इतनी खौफजदा हुई थी। और इसने स्टार्टर की तरफ हाथ उठाया ही था कि स्पोर्ट कार से आवाज आई, इसे भी देख लो। सबीहा ने बौखला कर देखा। उसके हाथ में स्याह रंग का बड़ा सा रिवॉल्वर नजर आया। चार पहिए बेकार कर दूंगा, जरा आगे बढ़कर तो देखो। लानत है ऐसी जिद्दी तबीयत पर, उसने दिल ही दिल में लरजते हुए सोचा। अब भला इसमें जिद बंदी की क्या जरूरत थी। अगर उसने एक आध बार ताकुब किया था तो इधर आना ही छोड़ देती। ऐसा ना करती तो जिंदगी के मामूलात में क्या फर्क पड़ता। पिछली रात अख्तर के मामले में बहुत परेशान हो चुकी थी तो सुबह मोहतात ही रहना चाहिए था। लेकिन ये दूसरी हिमाकत सरजद हो ही गई। वो एक टिक उस खौफनाक रिवॉल्वर को देखे जा रही थी कि दफातन पुश्त से एक हाथ रिवॉल्वर पर पड़ा और साथ ही रिवॉल्वर वाले के सर पर एक मैला सा कपड़ा भी। उसने ये भी देखा कि रिवॉल्वर उछलकर गाड़ी के नीचे आ गिरा है। एक तीसरा आदमी उस नामाकूल आदमी को दबोचे हुए था। वो उसकी सूरत ना देख सकी क्योंकि पुश्त उसी की तरफ थी। फिर जब वो उसकी तरफ मुड़ा तो उसकी आंख हैरत से फैल गईं। ये तो वही पिछली रात वाला लफंगा था जिसे वो माली की कोठरी में बंद करके कुफल लगा आई थी। उसने झुककर रिवॉल्वर उठा लिया और उसे ताकुब करने वाले की गर्दन से लगाए कह रहा था, दूसरी तरफ घूम जाओ, अगर इधर मुड़े तो गोली मार दूंगा। दूसरे हाथ से उसने उसकी गोद में पड़ा हुआ चाकू भी उठा लिया था। सबीहा ने देखा कि उसने वही मैला कपड़ा जो उसने उसके सर पर डाला था गर्दन में इस तरह बांध दिया है कि सर और चेहरा छुप कर रह गए हैं। अब कराओ नाश्ता, उसने सबीहा की तरफ मुड़कर कहा, और वो बेसाख्ता हंस पड़ी। अजनबी ने भी अहमकाना अंदाज में दांत निकाल लिए। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? उसने अपनी गाड़ी से उतरते हुए पूछा, लेकिन अहमक ने बाएं आग दबाकर उसे इस मसले पर कुछ कहने से बाज रहने का इशारा किया। सबीहा सचमुच खिली पड़ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस अजनबी को अरसे से जानती हो। अजनबी ने रिवॉल्वर और चाकू सबीहा की गाड़ी में डाल दिए और ताकुब करने वाले के सर पर से वो कपड़ा भी खींच लिया, लेकिन अजनबी दूसरी ही जानिब मुड़ा बैठा रहा। अब तुम इधर देख सकते हो, अजनबी ने अहमकाना अंदाज में खुश होकर कहा। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसके हाथ में रिवॉल्वर ना देखकर शेर हो गया। गाड़ी में बैठे बैठे टेक लगाकर छलांग लगाई और अजनबी पर झपट पड़ा। सबीहा डरी डरी सी आवाजें निकालती हुई एक तरफ हट गई। ताकुब करने वाला उसकी दानिश में इस अहमक नौजवान से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर था। दोनों उलझे हुए जमीन पर आए। फिर सबीहा ने देखा कि अहमक तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकल गया है। इसके बाद उसने उसे भी जमीन से उठ जाने की मोहलत नहीं दी, बस ठोकरों पर रख लिया और ताकुब करने वाला किसी बेबस भैंसे की तरह डकराता हुआ बार बार अपनी पोजीशन तब्दील किए जा रहा था। लेकिन शायद ही अजनबी की कोई ठोकर खाली गई हो और हर ठोकर पर उसके चेहरे पर कुछ ऐसे ही तासुरात नजर आते जैसे वो उसे ठोकर मार कर पछता रहा हो। बेहद शर्मिंदा होकर अपनी इस हरकत पर, जो मशीनी तौर पर मुतवातिर सरदर्द होती जा रही थी, मार खाने वाले की पेशानी से खून बहकर पूरे चेहरे पर फैल रहा था और वो बार बार अपनी आंखें साफ करता था। बस करो, अब बस करो, सबीहा बौखलाए हुए लहजे में बोली। चलो बस हो गई, अजनबी पीछे हटते हुए बोला। पिटने वाला औंधे मुंह पड़ा था। वो दोनों खामोशी से उसे देखते रहे। खून देखकर सबीहा पहले से भी ज्यादा खौफजदा हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना या कहना चाहिए। दफातन अजनबी सुहांसी आवाज में बोला, अरे इस वर्जिश की वजह से तो भूख और ज्यादा चमक उठी है। सबीहा ने बौखलाए हुए अंदाज में नाश्ते की झाबी पिछली सीट से उठाई और उसकी तरफ खामोशी से बढ़ा दी। उसने बयक वक्त दो तीन सैंडविच निकाल लिए और एक सैंडविच पर मुंह मारता हुआ जख्मी आदमी को पुरतश्वीश नजरों से देखता रहा। सबीहा आंखें फाड़ फाड़ कर खुद उसे देख रही थी। आखिर किस किस्म का आदमी है? कोई और होता तो सैंडविच खाने की बजाय यहाँ से चुपचाप खिसक जाने की फिक्र करता, क्योंकि पिटने वाला बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गया था। कुछ देर बाद वो मुंह चलाते चलाते रुक कर उससे बोला, होश में आने का इंतजार करोगी या फिर चलते फिरते नजर आए? मैं कहती हूँ अब भागो यहाँ से, अगर कोई आ गया तो। ये कमिश्नर का साला है, तभी इतना काला है, वो सर हिलाकर बोला। जल्दी से गाड़ी पर बैठ जाओ। इसे यहीं छोड़ जाओगी? नहीं तो फिर क्या, खुद ही अस्पताल पहुंचाएंगे? वो झुंझलाकर बोली। चलो जल्दी करो। ठहरो, अजनबी ने स्पोर्ट कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। नॉवेल बेबाकों की तलाश का बकिया हिस्सा अगले पार्ट 4 में समाप्त फरमाइए।